बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे जो बाबा की ओरिजिनल भाषा को समझते हैं। हिंदी का अपना ही रस है, ट्रांसलेशन में तो भाव बदल जाते हैं। तो जब मुझे कहा गया कि आपको हिंदी में क्लास हिंदी वालों का कराना है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं स्पेशल नीचे से अभी आया, अभी अभी पहुंचा हूं, क्योंकि आपको मालूम है बाबा के इस टर्न में करीब 16,000 लोग आने वाले हैं, 14-15 तो पहुंच भी गए हैं, तो बहुत भीड़ है नीचे, लेकिन फिर भी आपसे मिलने के लिए। कल ज्ञान सरोवर में डबल विदेशियों के पास आया था और आज आप डबल विदेशियों के पास आया हूं। बाबा ने हम सबको आज भी एक बहुत सुंदर वरदान दिया। सेवाएं हम सब बहुत करते हैं, प्यार से करते हैं, लेकिन सेवा भाव में अगर थोड़ा भी अहम भाव आ जाता है तो कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। बाबा की मुरली में भी बहुत प्यार से ये शिक्षा थी आज की मुरली में, कि अगर कोई बच्चे के सामने कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आता है और मैं देखता हूं कि बच्चा तो भोला है, बुद्धू है, तो मैं खुद प्रवेश होकर के अपना काम कर लेता हूं। लेकिन वो समझता है, कई बार तो समझता है बाबा ने करा लिया, और कई बार उसको भी अभिमान आ जाता है कि मैंने किया, मैंने समझाया इसको। तो मैंपन जहां आता है वहां ही सब समस्याएं पैदा हो जाती। संगम युग पर हम सबको बाबा ने कठपुतलियां बनाया है, डोर अपने हाथ में रखी है और नचा रहा है हम सबको, ऐसा है ना? कहीं भी रहो हमारी डोर बाबा के हाथ में है, और जो कराना चाहे कराए। हम सिर्फ निमित्त मात्र अगर हो करके रहते हैं, करावनहार बाबा है और आत्मा करणहार बन करके कर्म कर रही है, और दूसरा भान है कि करावनहार मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं। कर्म इंद्रियां भी अपने में फंसाती नहीं, न्यारे होकर के कर्म इंद्रियों से कर्म किया और अलग हो गए। तो बाबा ने हम सबको कर्म योगी बनाया है, और जब कर्म योग के अंदर जरा भी बैलेंस बिगड़ता है तो विघ्न आते हैं। पहला टॉपिक मुझे यही दिया है, विघ्न जीत कैसे बने, क्योंकि बाबा इस समय हम सबको कहते हैं, एक तो अपनी स्थिति निर्विघ्न बनाओ, पहले खुद निर्विघ्न बनो, फिर वायुमंडल को निर्विघ्न बनाओ, परिवार को निर्विघ्न बनाओ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कलयुग का अंतिम समय है, हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, इसलिए नए नए रूप में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई विघ्न आता है, हर एक के सामने आता है। बाबा कहता बच्चे विघ्नों से डरो मत, ये गुड साइन है आगे बढ़ने का, ले घबराओ नहीं है, हलचल में नहीं आओ, क्यों क्या कैसे प्रश्नों में उलझ न जाओ। आया है बहुत सहज रीति से, बाबा की याद से, बाबा के साथ से उस विघ्न को पार कर लो। अगर उलझ जाओगे तो माया देखेगी ये घबराया हुआ है तो और ज्यादा परेशान करेगी। घबराए हुए व्यक्ति को तो कोई भी तंग कर सकता है, लेकिन अगर हम अपने शक्तिशाली स्वरूप में रहते हैं और सदा ये भान रहता है कि हमारा साथी कौन है, भले मैं कमजोर हूं, कोई कारण से मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, लेकिन मेरा साथी तो सर्वशक्तिमान है ना, और वो साथ है, इसलिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिर्फ साथ रखना हमें आना चाहिए। तो कल मैं जब वहां पर अनुभव की लेन देन कर रहे थे, पहले जनरल क्लास था, विदेशियों का जो रिट्रीट चल रही है, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रुप में 20-20 के ग्रुप बनाए थे। तो हमने सबसे यही प्रश्न किया कि आपको बाबा के प्यार और बाबा के साथ का क्या अनुभव है, और हर एक के पास बड़े अच्छे अच्छे अनुभव थे। बाबा के बच्चों को ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको बाबा के साथ का अनुभव न हो। किसी न किसी रूप में बाबा ने अपनी मदद का, अपने साथ का हर एक को अनुभव कराया है। तो बाबा भी हम सबको कहता है, बच्चे मुझे साथ रखो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा साथी बन करके मदद करने के लिए बन जाता हूँ। तो विघ्न कौन से हैं वो हम सब जानते हैं। कहते हैं जब संसार सागर है तो सागर में लहरें तो स्वाभाविक होती ही हैं। अगर लहरों से कोई डर जाएगा तो सागर का आनंद नहीं ले सकेगा, उसके अंदर के रतन नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ऊपर ऊपर की लहरों से घबराना नहीं है। क्यों, कैसे ऐसे हो गया, मैं बाबा का बच्चा बना, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। और बाबा कहता है जब कोई बीमारी को समाप्त करने के लिए पहले जमाने में वैद्य लोग दवाई देते थे, तो पहले से कह देते थे मैं दवाई दे रहा हूँ, आप घबराना नहीं, जो अंदर की बीमारी है वो बाहर आ जाएगी, और जब बाहर आ जाएगी तो समाप्त हो जाएगी। अंदर अंदर दबाते रहते हैं अंग्रेजी दवाइयों से, और फिर कहीं न कहीं से वो रूप बदल करके आती है। इसलिए बाबा भी हम सबको कहते हैं, बच्चे जो भी अंदर कोई पुराने संस्कार, स्वभाव, आदतें दबी हुई हैं, छिपी हुई हैं, जब आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो वो दिखाई देती, बाहर आने लगती है, पहले नहीं पता चलता। वो तो ही माया के चक्कर में, उनको क्या पता ये माया है, वो तो उसी के अंदर चल रहे हैं। हम जब बाहर निकलते हैं तो लगता है ये बात हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो दिखाई देता है, ये बड़े रूप में आ गया। तो कोई भी प्रकार का विघ्न आए, चाहे मानसिक रूप से आ जाए, क्योंकि मन को डिस्टर्ब करने वाली संगठन में बहुत सी बातें होती हैं। जिस संगठन में हम चलते हैं, रहते हैं, कोई ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, फौरन अगर हमने उसको बड़ा रूप दे दिया, अपमान की फीलिंग आ गई, है सूक्ष्म अभिमान, लेकिन मान लो किसी ने मुझे कुछ कह दिया, टोक दिया किसी बात में, और मेरे सम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंच गई, अपमान को फील कर लिया, तो वो हमारे लिए विघ्न बन गया। यहाँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जाती, मैं तो यज्ञ में इतना सब कुछ करता हूँ, तन से, मन से, धन से, लेकिन मुझे यहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो धीरे धीरे वो खुशी गायब हो जाती है, संगठन का प्यार टूट जाता है, एक दूसरे से बात करने की दिल नहीं होती, और अपने लिए लगता है बहुत बड़ा मेरे आगे विघ्न आ गया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे छोटी मोटी बातें परिवार के अंदर तो होंगी, वैसे भी दुनिया में कहते हैं जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ टक टक हो ही जाती है, कितना भी संभालो फिर भी कुछ न कुछ एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। तो हम सबको बाबा कहता, बच्चे से डरो मत, घबराओ मत, ये परिवार के बीच में आए हो, बाबा तो इस समय संगम पर तुम्हारे साथ है, उससे तो प्यार है ही तुम्हारा, लेकिन परिवार के साथ तो तुमको 84 जन्म रहना है, रहना तिन्हीं के साथ है, और कोई तो आएंगे नहीं संबंध में। तो जब यही सारे 84 चक्र में आने वाले हैं, तो हमको उनके साथ ही, उनके स्वभाव को, उनके संस्कारों को, उनकी भावनाओं को समझ के उनके साथ अपने को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। क्यों हम कहें ऐसा क्यों हमारे साथ किया, इसने ऐसा क्यों किया, अगर हम उलझ जाएंगे तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। अधिकतर जितने भी ज्ञान मार्ग से टूटे हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं, इनको संगठन के बीच में जब एक दूसरे के बीच में आते हैं और नहीं बनती है आपस में, कोई कारण से एक दूसरे के स्वभाव संस्कार टकराने लगते हैं, तो किनारा कर ले, इससे तो हम लौकिक में अच्छे थे, इससे तो हमारी वो जीवन अच्छी थी, अभी तो हम, बाबा कहता है ये परिवार है आपका, लेकिन वो कहाँ प्यार है, वो कहाँ स्नेह है, इस प्रकार के प्रश्न लेकर के अपने आप को भारी कर लेते हैं और भारी होते 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 किनारे लग जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसी बातों से डरो मत, परिवार में कोई न कोई छोटी मोटी बातें होती हैं, उन बातों को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनो। कई बार तिल जितनी बात ताड़ बन जाती है, समझते हैं तिल और ताड़ कितना अंतर होता है। एक झाड़ होता है ताड़ का बहुत बड़ा होता है और तिल इतना छोटा सा होता है। बात छोटी सी हुई, तिल जितनी हुई, लेकिन उसको हमने सोच 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 करके बहुत बड़ा रूप दे दिया। पहले खुद सोचा और फिर दूसरे को सुना दिया तो उसने और विस्तार करके बड़ा कर दिया। विघ्न कुछ नहीं है लेकिन वो विघ्न हमने अपने आप क्रिएट कर दिए। संगम पर कोई बात असंभव और बड़ी है ही नहीं। अगर बाबा हमारे साथ है तो बातें क्या हैं? बाबा कहते तो बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी, तुम परवाह क्यों करते हो, तुम्हारा साथी मैं हूं ना, पार कर दूंगा। तो बाबा इतनी हिम्मत दिलाता है, इतना उमंग दिलाता है, लेकिन हम सभी कभी कभी छोटी छोटी बातों में लेकर के अपने आप को दिल से कष्ट कर लेते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, संस्कार स्वभाव के टक्कर में आ जाते हैं। कभी अपने ही संस्कार मुझे परेशान करते हैं, कभी संबंध में जब हम आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, उनके संस्कार स्वभाव अपने होते हैं और उनको हमने अगर नहीं समझ पाया तो वो समझ न पाए तो उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ये भावना है कि यही आत्माएं पूरे कल्प में मेरे साथ रहने वाली हैं और इनके साथ ही कुछ न कुछ हिसाब होगा, तब हम साथ में आए हैं। एक हंसी की बात सुनाता हूँ। बाबा के समय में एक कुमारी एक बड़ी बहन के साथ रहती थी, छोटी थी तो बेचारी नई नई थी, कुछ समय रही साथ में तो बहन जी उसे कुछ न कुछ डांट भी देती थी, काम भी लेती थी, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी कि हमारी बड़ी बहन मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती ऐसे व्यवहार करती। तो बाबा के पास आकार में बाबा के पास आई और बाबा को अपना सुनाने लगी, बाबा मेरी दीदी ऐसे करती है, मेरी दीदी ऐसे। तो बाबा बड़े प्यार से सुनता रहा, पूछता रहा, बच्ची और क्या करती और क्या करती और क्या करती, सब उससे पूछवा लिया, हल्का कर दिया उसको। तो बोला बच्ची एक बात कहूँ? हाँ बाबा को, बच्ची तुम पिछले जन्म में ना तुम उसकी सास होती, तुमने भी बहुत उसको सताया था, इसलिए तुमको इस समय बोलती है, तुम भी सहन कर लो, बदला तो लेगी ना कभी न कभी। तो बाबा बड़ा रमणीक था, ऐसे करके उसको हंसा दिया रमणीकता से कि कुछ तो कोई, तुमने भी पिछले जन्म में कुछ उसके साथ ऐसा किया था तो इस समय तुमको तुम्हारे साथ हो रहा है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं करो रूप। परिवार में अगर कोई ऐसी बातें आ जाती ना तो ऐसे समझो कोई पिछले जन्म में हमारा कोई इनके साथ ऐसा हिसाब किताब था, वो पूरा हो रहा है, चुक तो हो रहा है। तो बाबा बहुत रमणीकता से हम बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, कोई बात को बड़ा रूप दे करके, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ हो गया वहाँ हो गया। बाबा था क्यों तेरे मेरे में जा रहे हो, तो सब होंगी, बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगे, हमको तो इसी परिवार के साथ चलना है, इसी परिवार के साथ आना है, रहना है। तो फिर हम समझ करके हर एक के स्वभाव को, संस्कार को, उनकी आदतों को, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे। सबसे बड़ी शक्ति है एडजस्ट करने। कई बार कुछ स्थानों पर भटकती हुई आत्माओं के अटैक होते हैं, वो विघ्न अलग प्रकार का है। कोई ऐसी भावना से ईर्ष्या के वश, द्वेष के वश, नफरत के कारण कोई न कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जंत्र, आजकल बहुत बड़ी माया दुनिया के अंदर है जो अनेक प्रकार के विघ्न हमारे आगे ले आती है, उसके बचाव के लिए बाबा ने हमको रक्षा कवच दिया है। ये छोटे मोटे विघ्न परिवार के अंदर जो संस्कार के, स्वभाव के, आदतों के आ रहे हैं, उनको तो हम ज्ञान और योग की शक्ति से पार कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान है हमारे पास, समझ है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, पूरा होने का समय है, ज्ञान से हम इसको जीत लेते हैं। लेकिन जब ऐसे प्रकार के विघ्न आ जाते हैं तो बाबा कहता है बच्चे अपने पास अष्ट शक्तियों की, वैसे भी भक्ति के अंदर नौ रत्नों का बड़ा गायन है, नौ रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, नौ रत्नों की विशेष पूजा करते हैं, नौ ग्रह की पूजा करते हैं। तो बाबा ने हम सबको जो नौ आठ शक्तियां हैं और नौवां बाबा है। अगर इनको बाबा को सदा साथ रख के शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो ये विघ्न भी सहज हट जाते हैं। ये अंगूठी जैसे पड़ी हुई है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा। किसी के आगे हमको झुकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तुम एक रक्षा कवच पहन करके रहो, मैं तुमको रक्षा कवच देता हूं। जब कोई युद्ध के मैदान में जाता है या जब कोई के ऊपर बहुत आतंक का छाया होता है, कुछ हो सकता है, डर होता है, तो आजकल के भी वीआईपी अंदर एक कवच पहन लेते हैं सुरक्षा का, जिससे कोई गोली भी मारे तो लगे नहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठते हैं, सुरक्षा के लिए बहुत साधन अपनाए जाते हैं। और बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारे चारों तरफ से माया वार करने के लिए दुश्मन घूम रहा है, तुमने रक्षा कवच तैयार किया अपना, पहनते हो या ऐसे ही बिना रक्षा कवच के ही चले जाते हो, जहां चाहिए वहां चले गए तो कुछ न कुछ अटैक हो जाएगा, कोई न कोई वार कर देगा। इसलिए सबसे अच्छा रक्षा कवच कौन सा है, सवेरे सवेरे उठ करके अपने चारों तरफ से एक लाइट का रक्षा कवच पहन लो, लाइट के शरीर में चले जाओ, है हम सबके साथ। बाबा जिसको कहता है, आप सबके चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल है। जिस प्रकार के हम संकल्प रचते हैं उसी प्रकार का ओरा हमारे तरफ चारों तरफ से रहता है। अगर हम पवित्र संकल्पों में रमण करते हैं, बहुत शुद्ध संकल्प करते हैं, कोई नेगेटिव संकल्प आने नहीं देते, तो आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा निर्माण होता है। भक्ति के अंदर भी मान्यता है इसकी, और आजकल भी जो महान आत्माएं हुई हैं, धर्म आत्माएं हुई हैं, जब उनके फोटो बनाते हैं तो उनके चारों तरफ से वो लाइट दिखाते हैं, इस मस्तक के चारों तरफ लाइट का घेरा दिखाते हैं। और इसका भी आजकल फोटो वीडियोग्राफी भी कर लेते हैं, फोटो भी निकाल लेते हैं कि किसकी किस प्रकार की लाइट है। और हम सब आत्माएं इतने समय से पवित्र और योगी हैं, कितने समय से हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कितने समय से हम शुद्ध अन्न खा रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, पढ़ाई है इतनी, बाबा की ऊंची शिक्षाएं, मुरली सुन रहे हैं, तो इतना अच्छा हमारे पास चारों तरफ हो रहा है। विचारों से, शुद्ध संकल्पों से हर एक आत्मा के चारों ओर एक ओरा है। लेकिन बीच बीच में अगर हम साधारण और नेगेटिव संकल्प करते हैं तो उस ओरे के अंदर कुछ न कुछ ब्लैक दाग आ जाते, धब्बे आ जाते, जहां से कोई शत्रु वार कर सकता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कहते हैं, कोई भी प्रकार की बातें आए, विघ्न आए, समस्याएं आए, कोई आपके ऊपर कोई प्रयोग कर भी रहा हो, अगर आप लाइट के ओरे में हो तो आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार बाबा ने एक मुरली चलाई थी, जिस स्थान पर आप लोग रहते हो उस स्थान पर जैसे सुरक्षा के लिए बाउंड्री के ऊपर कांटों की तार लगाई जाती है, और कांटों की तार से भी यदि सुरक्षा महसूस नहीं होती तो उस पर बिजली की करंट छोड़ी जाती है। यहाँ पर बॉर्डर है, जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर है, बहुत डर रहता है लोगों को, पता नहीं आतंकी घुस आएंगे, कब क्या होगा। तो वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तार लगाई है लोहे की। मैं एक बार बॉर्डर देखने गया था, यहाँ पर नजदीक में है यहाँ अबू के, तो बहुत ऊंची ऊंची तार थी। तो जब मैं जा रहा था उसके साथ रोड पर, सिक्योरिटी के साथ ही मुझे घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, तो बोला उसके नजदीक नहीं जाना तारों के। मैं क्यों? बोला इस पर करंट भी छोड़ते हैं, इतनी बड़ी तार है, कौन जा आपको फांद करके आ रहा है। बोला नहीं, इसको भी काट के लोग आ जाएंगे, इसलिए उसको भी न काट सके, उसको पर भी न कर सके, इसलिए इसके साथ साथ एक तार जुड़ी हुई है लाइट की, करंट, और बीच बीच में उसको ऐसे सदा नहीं छोड़ते हैं, सदा तो कई जानवर मर जाएंगे, लेकिन बीच बीच में वो लाइट छोड़ देते हैं, जिससे डर बना रहे कि इसको अगर टच करेंगे तो कई फुट दूर गिरेंगे जाकर के, कट करना तो दूर है लेकिन बहुत दूर चले जाएंगे। तो इसलिए इस बाउंड्री पर लाइट की करंट है। तो बाबा भी हम सबको क्या कहता है कि बच्चे जिस स्थान पर आप रह रहे हो अगर वहां पर बहुत विघ्न आ रहे हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो आप सवेरे सवेरे उठ करके अपनी बाउंड्री पर, मकान की बाउंड्री पर भी, घर की बाउंड्री पर भी योग की तार लगा दो। ऐसी याद की यात्रा में रहो कि चारों तरफ से एक शुद्ध संकल्प का घेरा बना दिया और उस पर बाबा की करंट आ रही है, किरणें आ रही है, कौन प्रवेश कर सकता, कोई नहीं आ सकता। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूं। जब मैं मधुबन में समर्पित हुआ तो सारा परिवार मेरा लौकिक ज्ञान में था, लेकिन एक दादाजी हमारे जो थे बहुत एंटी थे। उसका कारण था वो कुमार थे और सिद्धि सिद्धि बहुत जानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, और बचपन में ही मैं जब चार पांच साल का था तो अचानक बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा। तो मेरे पिताजी को, मेरे उनके छोटे भाई होते, उनको बोला कि इस बच्चे को अगर बचाना है तो तुम मुझे दान में दे दो, मैं इसको बचा लूंगा। एक नर्सरी छोड़ दिया था मेरे छोटे भाई ने और मुझे बचाने के हिसाब से कहा अच्छा भले आप संभालो। तो मैं चार पांच साल की उम्र से ही उनके पास रहने लगा और वो बहुत पूजा पाठ करते, बहुत तंत्र मंत्र और कई भूत परे झाड़ने वालों की लाइन लगी रहती थी। उनके पास मंदिर था, मैं वहीं रहता था उनके साथ, पढ़ता भी था, स्कूल भी जाता था। तो जब मैं मधुबन में आया तो उनका भी बिल्कुल विचार नहीं था, वो ज्ञान को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो उन्होंने प्रयोग करना चाहा मेरे ऊपर कि कैसे है वो जाएगा हम देखते हैं। और मैं यहां मधुबन में आ गया, आया तो ऐसे ही अचानक ही था, देखने के हिसाब से मेरी लौकिक बहन यहां ले आई थी। पहले कभी मैंने मुरली नहीं सुनी थी, क्लास घर में चलता था, मैं सोया रहता था। यहाँ आया तो यहाँ जो देखा और यहाँ का जो वातावरण मिला, परिवार मिला, दादियां मिली, संग मिला, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं हुआ मैं लौकिक में जाऊं। मैंने कहा मैं तो यहीं रहूंगा, था मैं 15 साल का। तो दादी ने कहा अभी तुम छोटा है, तुम और पढ़ लो, अभी तो परिवार में इकलौता बेटा और तुमको कैसे छुट्टी मिलेगी। हमने छुट्टी लेना मेरा काम है, आप मुझे यहाँ की छुट्टी दो। तो जब मैं लौकिक में गया तो पिताजी ने तो बहुत खुशी से छुट्टी दे दी, लिख दिया लेटर, क्योंकि सबको निश्चय था 76 में विनाश हो जाएगा, बहुत पक्का एकदम विश्वास था। बाबा कहता ना 76 में विनाश, बच्चे बस खत्म हो जाएगा। तो पिताजी ने कहा 4-5 साल तो रह गया, अभी क्या करेगा पढ़ करके, लाओ मैं लिख के दे देता हूँ, जाओ। तो मैं 72 में यहाँ आ गया। अब वो दादाजी को मेरे इतना अंदर से था कि मैं किसी भी प्रकार से उसको वहां नहीं रहने दूंगा। उन्होंने माँ के ऊपर कुछ किया, ये किया, वो किया, वो तो बड़ी लंबी कहानी है। मैं मधुबन में आया, कुछ साल रहा, 3-4 साल, फिर दादी ने कहा बीच बीच में चक्कर लगाओ, घर जाना चाहिए। तो मैं एक बार गया तो उनसे मिला जा करके, तो कहते हैं आपके पास मेरी शक्तियां पहुंच नहीं पाती है, नहीं तो आपको मैं कभी नहीं रहने दूं। क्या क्या है वहां? मैंने उनसे पूछा क्या है वहां, बोला वहां तो इतनी बड़ी लाइट है जो ऐसे चमकती है, जो मेरी शक्तियां जब मैं भेजता हूं तो मेरे पास फट से वापस आ जाती है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाती। हमने कहा कौन सी लाइट है? तो बोला नहीं, वहां एक स्तंभ है, शांति स्तंभ उनको दिखता था, वो स्तंभ है, वो लाइट है, वहां से लाइट निकलती है और वो बाउंड्री में बहुत पवित्रता की शक्ति है, आप जहां हो ना बहुत अच्छे स्थान, हमारी शक्तियां वहां कुछ नहीं कर सकती। तब मुझे ये विश्वास हुआ उस समय कि बाबा जो कहता है ना बच्चे योग का किला होना चाहिए, किले को कोई भी आसुरी शक्तियां क्रॉस नहीं कर सकती हैं, कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि मैं आत्मा अपने बिल्कुल शुद्ध संकल्पों में रमण करती हूं, पवित्र संकल्पों में रहती हूं, तो कोई भी शक्तियों का प्रभाव नहीं हो सकता है। कहीं पर भी आप चले जाओ, कहीं भर भी आप रहो, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपना रक्षा कवच अपने आप तैयार करना। कोई साधारण संकल्प, कोई नेगेटिव संकल्प, क्या होगा कैसे होगा करने की जरूरत नहीं है। बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों में साथ बाबा को रख करके लाइट के घेरे में रहो, ये है सुरक्षा कवच। कहीं भी रहेंगे ना, कोई विघ्न कितना भी आ जाए क्या करेगा हमारा विघ्न। और ही हम आगे बढ़ेंगे, अनुभवी बनेंगे। आगे बढ़ना माना हमारी एक अनुभव की शक्ति बढ़ जाएगी, एक अथॉरिटी आ जाएगी कि नहीं ये बात आई है मैं ऐसे पार कर लूंगा, ये बात है इसे पार हो जाऊंगा, ये बात है ऐसे पार हो। तो ऐसे लगता है कि पेपर हरेक के सामने आए होंगे। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, कोई न कोई प्रकार से लौकिक से अलौकिक से, हिसाब किताब, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी न किसी प्रकार का रुकावट, कोई न कोई प्रकार का विघ्न हरेक के सामने आता है। लेकिन एक ही बल, एक भरोसा है कि बाबा मेरा साथी है, संगम युग पर बाबा को मैंने अपना बनाया है, और वो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिवान है, और बहुत प्योर प्योर है, इसलिए उस प्योरिटी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। हमारे चार स्तंभ हैं, वो चार स्तंभ अलग है जो हम नए लोगों को बताते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की उन्नति के लिए चार स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है आपसी रूहानी प्यार। जब रूहानी प्यार की आपस में कमी होती है तो नीरस जीवन अनुभव होने लगते हैं, नीरस, जैसे कोई रस नहीं है इस जीवन में। लौकिक को छोड़ के आए, बाहर का खाना पीना मौज मस्ती जो दुनिया वाले कर रहे वो सब छोड़ के आए, बाहर हम नहीं जा सकते, न खा सकते, न होटलों में जा सकते, न ये कर सकते, बहुत सारे बंधन आ गए। जिस बंधनों में लोग आज समझते हैं यही सब कुछ है जीवन, बाबा ने हम सबको उसे छुड़ा दिया। अब इस परिवार में आए, इस परिवार में अगर हम रुके सुखे रहे, सन्यासी बन के रहे, उदासी बन के रहे, तो क्या लगेगा, जीवन नीरस है, रस ही नहीं कोई है। और जब रस नहीं है तो जीने का मजा क्या है। इसमें अगर हम सबका एक बहुत अच्छा रूहानियत भरा प्यार हो, स्नेह हो, एक दूसरे के लिए हम हैं, कोई को कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बात आ गई, कोई परीक्षा आ गई, हम है ना साथ में, जैसे बाबा कहता मैं हूं ना, लेकिन बाबा निराकार है, कभी कभी उसके अनुभव को करने के लिए, उसके साथ का अनुभव करने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन इतना बढ़िया परिवार हमको मिला है, अगर कोई एक बात हो जाए तो 10 लोग आ जाए सामने। एक कुमार था, बहुत निश्चय बुद्धि, उसकी कहानी सुनाता हूँ। सेंटर्स पर मैं जाता हूँ भट्टी कराने, कुमारों के संगठन में एक बार गया मैं, करीब वहां पर 30-40 कुमार क्लास करते एक साथ ही। अब जब कुमार जीवन में होती है और सेंटर्स पर रहने लगते हैं तो उनके माँ बाप सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों का ही सारा काम करता है, मैं इसको क्यों मदद करूं, उसको बेचारे को कुछ नहीं सहयोग मिलता था, और वो सेंटर पर दिन रात लगा रहता था, नौकरी भी करता, सेंटर पर ही खाता, सेंटर पर ही सेवा करता। अचानक वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। अब ऐसे समय पर तो लौकिक ही मदद करता है करके, लेकिन नहीं, उसके साथ जो 30-40 कुमार थे उन्होंने कहा तुम लौकिक को कोई बताओ नहीं, कुछ जरूरत नहीं, तुमने इतना बाबा के लिए किया है, हम लोग किस लिए हैं। वो गए, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर की सेवा की, ज्ञान सुनाया कि ऐसे समर्पित है, ऐसे ऐसे ईश्वरीय सेवा के लिए है, और आप इसको प्यार से इसका ऑपरेशन करो, इसको ठीक करो, हम लोग जो खर्चा होगा हम करेंगे, और आप जितना माफ कर सकते हो फ्री कर दो। उसकी पूरे ही जब तक वो बेड पर रहा 1.5-2 महीना एकदम प्यार से उसकी सेवा किया सब कुमारों ने मिलकर के, टीचर्स को भी बीच में नहीं बदलाया, और इतनी अच्छी सेवा कर दी, वो ठीक हो गया, लौकिक को पता भी नहीं चला। लौकिक वालों को बाद में पता चला, इतने बड़े एक्सीडेंट में भी मेरा साथ नहीं लिया इन्होंने, पूछा नहीं, तो जरूर इनके पास शक्ति है। कौन सी शक्ति? ये रूहानियत की शक्ति है, प्यार की शक्ति है। हमारा आपस में इतना प्यार कि कोई की कोई प्रॉब्लम आ गई, चलो हम है ना, आप मदद पूछो तो बताओ तो हमको, हम है तो कम से कम लौकिक की तो नहीं याद आए जिसको छोड़ के आए। तो इसलिए ऐसे समय पर ये रूहानी प्यार एक फाउंडेशन बन जाता है, पता चलता है कि हम बहुत बड़े परिवार के संगठन में हैं। केवल हम बहनों पर डिपेंड करते हैं और बहनों के आगे कई ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, कई बंधन होते हैं, सिर्फ समर्पित बहनों के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति में हम रह रहे हैं, प्रवृत्ति वाले आपस में मिल करके एक दूसरे के दुख सुख में साथ दे करके, मदद दे करके, पूछ करके उनको ये अनुभव कराएं कि हम तुम्हारे साथी हैं, आप जरा भी संकोच नहीं करो, तो इस ईश्वरीय परिवार का फाउंडेशन मजबूत होता रहेगा। अगर हमारी आपस में ईर्ष्या हो रही है, कोई को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोई को नहीं बढ़ाया जा रहा है, कोई को पूछा जा रहा है, कोई को नहीं पूछा जाता, कोई को बड़े चांस मिलते हैं, कोई को नहीं मिलते। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे परिवार में आपसी स्नेह को कम करती है। भाई इसको बड़ा मान मिल जाता है, मैंने इतना किया मेरे कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसको हर चीज चांस मिलता है, हमको कोई चांस नहीं मिलता है। जरा भी अगर अंदर से ये संकल्प ये भावनाएं उत्पन्न होती है ना, तो हमारे परिवार में प्यार की कमी महसूस। हमें जो मिला है वो बहुत कुछ मिला है परिवार के अंदर, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और यहां तक कहता है बच्चे तुमको कोई कुछ नहीं देता, तुम छोड़ो मैं तो तुमको सब कुछ दे रहा हूं। आज बाबा ने हम लोगों को कितना सम्मान दिया है, कितना सम्मान दिया है, कैसे नजरों ऊंची नजर से देखता है। फिर बाबा के ही प्यार को याद करते हैं तो ऐसे लगता है हमको सब कुछ मिल गया, हमको क्या चाहिए आत्माओं से। हम तो बाबा जैसे दाता बन गए, हमको बाबा ने इतना दे दिया है जो हम सबको देने वाले बन गए, हमको किसकी जरूरत है। और बीज से जो प्यार करता है, एक गहरी बात आपको सुनाता हूं, बीज जिसके हाथ में है वृक्ष उससे दूर नहीं हो सकता है। बीज को अगर हमने पकड़ लिया, बाबा को हम अगर सच्चा प्यार से संबंध से याद करते हैं, उसके साथ हमारा अच्छा प्यार है स्नेह है, तो परिवार तो बंधा हुआ उसके साथ, कहां जाएगा, देना ही पड़ेगा उसको, तो बीज हमारे हाथ में है। लेकिन हम परिवार से जब भेंट करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हमारी दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए परिवार में अगर कोई बात कभी रुकावट महसूस हो तो परिवार से थोड़ा सा न्यारे प्यारे होकर के बाबा से शक्ति लो, और बाबा को इतना प्यार करो जब ये सब प्यारे बन जाए, सबका प्यार मिलने लगे, सबका स्नेह मिलने लगे। इसलिए बीज को अगर पकड़ते हैं ना, सारा संसार अपना हो जाता है। तो हम सब बाबा को एक बाबा दूसरा न कोई, एक अंगूठी है ये। और जब कोई विघ्न आते हैं तो बाबा कहता है बच्चे अपनी लगन को चेक किया है, जहां लगन है वहां विघ्न नहीं रहते। अगर बार बार विघ्न आ रहे हैं तो जरूर लगन में कमी है। लगन माना प्यार, लगन को बढ़ाएं। जैसे कोई आग अगर कमजोर होने लगती है, धीमी होने लगती है, तो देखते हैं कहीं लकड़ी कम है, कोई चीजें और डाल दें जिससे अग्नि तेज हो जाए। अगर मेरा प्यार कम हो रहा है किसी कारण से, तो हम किस प्रकार के साधन प्रयोग करें जो लगन और बढ़ जाए, वो प्यार की आग बढ़ जाए। वो प्यार की आग जब बढ़ जाएगी ना, तो वो विघ्न आएंगे, खत्म हो, जल जाएंगे। उस लगन को बढ़ाने के लिए हमको युक्तियां रचनी है, बस। विघ्न है ही नहीं कोई भी, कोई बड़ी बात है ही नहीं। और विघ्न विनाशक आत्माओं के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे यादगार में गणेश को विघ्न विनाशक माना गया है, श्री गणेश को। जब कोई पूजा करेंगे, घर के में प्रवेश करेंगे, कोई नया काम करेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, तो गणेश का चित्र बना देंगे। गणेश जो यादगार बनाया है, ऐसा कोई है नहीं व्यक्ति, लेकिन उसकी जो यादगार प्रतिमा है वो प्रतीक है। लंबी सूंड है, बड़ा पेट है, बड़े बड़े कान है, जो भी उसके ऑर्गन्स बनाए गए हैं वो सब प्रतीक रूप है विघ्न विनाशक के, नॉलेज फुल के। अगर कोई विघ्न आने वाला है वो दूर से परख ले, नॉलेज फुल है, विद्यापति है कि विघ्न आ सकता है, इसलिए सूंड लंबी है, सूंघने की शक्ति, समझने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, विजडम है, वो जानता है ये विघ्न यहां से आ सकता है, ये पेपर यहां से आ सकता है, ये माया यहां से आ सकती है। नहीं, बाबा कहता है अगर बरसात आने वाली होती ना तो बादल बन जाते हैं इसे, और जब बादल दिखाई देते हैं तो जो जाने वाला है रास्ते में वो सेफ्टी के लिए साधन पहले ले लेता है, क्योंकि उसको पता है बरसात पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, साधन है उसके पास, सेफ होकर के जा रहा है। अगर लगता है इस माहौल में, इस संगठन में मेरे आगे ये विघ्न आ सकता है कोई भी, तो पहले से अपनी सेफ्टी फर्स्ट, अपने साथ उसके साधन ले लो, अपना अच्छा चिंतन ले लो, अपना अच्छा सम्मान ले लो, अपनी अच्छी मस्ती में एकदम मस्त होकर के फिर जाओ, ताकि कोई बात आ जाए पार हो जाओ, परखने की शक्ति। और दूसरा जो बड़ा पेट, सम्मानने की शक्ति है, कोई बात आ जाए वर्णन चिंतन नहीं करो, वर्णन करने से वो बात बतंगड़ बन जाती, बात नहीं रहती, वो बात का बड़ा विस्तार हो जाता है। वर्णन कर दिया ना, एक को सुनाया, दो को सुनाया, तीन को सुनाया, वो बात सुनते सुनते फैलते फैलते एक बात, मैं आपको एक बात एक के बहन के कान में कह दूं, और मैं ये कह के कहूं कि आप ये बात दूसरे को नहीं सुनाना, आप 10 दिन के बाद देखोगे वो 10 के बाद आपके पास आ जाएंगे। प्रैक्टिकल है ये, मैंने कई बार ये तैयार किया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, केवल एक को बताया और ये कह के बताया कि ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए। और 10 दिन के बाद वो बात एक बहुत बड़े रूप में मुझे पता चलती है कि इसके तक पहुंच गई, क्योंकि बातें फैलने में देर नहीं लगती, आग जैसी फैलती। और नेगेटिव बातें तो इतनी फास्ट फैलती हैं, अच्छी बातें नहीं फैलेंगी। जो गलतियां होंगी, बुराइयां होंगी, कमी कमजोरी किसी की हम वर्णन करेंगे और कहेंगे हम आपको कान में ही बताते हैं, वो कान कान से फैलते फैलते वो इतने बड़े रूप में आती है, जो कहते हैं खोदा पहाड़, निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। मानी बात कुछ नहीं है, मरी हुई बात है, कुछ नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 पहाड़ का रूप ले लेती, बड़े रूप में आती है। वातावरण ऐसे लगता बहुत भारी है, यहाँ का बहुत वातावरण भारी लगता है। क्या भारी हुआ? क्योंकि वातावरण बातों में फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। इसलिए बाबा कहता बच्चे कोई भी सुनाए, कोई भी बात आपको किसी के लिए कहे, ऐसा है, ऐसा है, उसने ऐसा किया, मेरे तेरे काम की नहीं है ना, ये हाथी के कान है, चीटी भी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, संभाल के रखना, चीटी गई हाथी के कान में तो बेहोश हो जाएगा, और पैर के नीचे 1000 चीटियां आ जाए उसी समय मर जाएंगे, कान में चली गई एक चींटी तो बेहोश कर देगी। इसलिए कोई छोटी सी छोटी बात भी अगर कोई सुनाए ना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, भाई मेरे काम की नहीं है, मुझे इसमें क्या जाता है, चलो अच्छा बड़े है ना, महारथी, इसने किया उसने किया, बाबा बैठा ना उनको सुधारने वाला, मैं तो सुधार सकता नहीं इनको, और जब मैं इनको सुधार नहीं सकता इनके लिए मैं क्यों सोचूं। मेरे आगे कोई यहाँ सुनाता है ना संगठन में आके, भाई को हुआ उसको हुआ उसको वैसा हुआ, मेरे काम की बात नहीं, न मैं उनको सुधार सकता हूँ न मैं उनको कह सकता हूँ, तो मेरे को सुना के क्यों फायदा नहीं, जब फायदा ही कोई नहीं तो मैं क्यों सुनूं। ध्यान रखना है अपनी उन्नति के लिए कोई भी किसी की बातें सुना दे मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, मेरे काम की बात नहीं है। जब हियर नो ई विल, सी नो ई विल, टॉक नो ई विल कहते हैं तो पहले थिंक और डू भी ऐड कर दो, मुझे सोचना भी नहीं इसके विषय में, करना तो बहुत बड़ी बात है। ये बातें जो व्यर्थ की हैं ये वातावरण को बहुत बड़ा बना देती, बिगाड़ देती हैं, और यही विघ्न है। कोई विघ्न नहीं है सेंटर्स पर, लेकिन जहां पर व्यक्त और व्यर्थ, व्यक्त और व्यर्थ चल रहा है वहां पर अनेक प्रकार के विघ्न है। जिस सेंटर पर रूहानियत का वातावरण है कोई व्यक्त बातें नहीं होती, कोई भी प्रकार की समाचार की लेन देन नहीं होती, आए क्लास किया, योग किया, अच्छे वातावरण में भोग किया, सब किया और गए अपने घर में, कोई स्थूल बात नहीं होती, वहां पर विघ्न नहीं होते। और जहां स्थूल बातें चलती हैं, खाना पीना, हंसना बहलना, ये वो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वहां पर एक के बाद एक विघ्न आना शुरू हो जाते। अगर सचमुच कोई को विघ्न जीत बनना है तो ध्यान रखो मैं अपने घर के वातावरण को भी बिल्कुल रूहानियत से संपन्न बना दूं, केवल रूहानियत, कोई भी जिस्मानी चर्चा यहां नहीं होगी। जो करना है, कई एक बार बाबा ने कहा था मैं युगलों के घरों में जहां सोते हैं वहां चक्कर लगाता हूं, मुरली याद होगी, बड़ी रमणीकता से बाबा ने ये बात कही थी, बच्चे बेड पर जाकर के ऐसी फालतू बातें क्यों करते हो, करना है अच्छा तो बेड के बाहर बैठ के कर लो, कम से कम जिस कमरे में सोते हो उस घर के वातावरण को तो अच्छा रखो, अगर कोई बात करनी है तो सिटिंग रूम में जाके करके आ जाओ, जिस स्थान पर सो रहे हो, जिस स्थान पर खा पी रहे हो, योग कर रहे हो, उस स्थान के वातावरण को आप खंडित नहीं कहो, वहां के वातावरण को बहुत शक्तिशाली, योग का संपन्न, रूहानियत से भरपूर बना के रखो, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी। कोई भी बात आई, कोई ने कही, कोई बात हुई, सिर्फ छोटी छोटी बातों को फील करके मूड खराब नहीं करना है। मूड खराब हुई तो समझो आप कितना भी प्रयास करो खुशी की लहर आएगी नहीं। एक बार हमारे जगदीश भाई ने किताब लिखी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, 36 प्रकार के मूड, और वो दिन भर में बदलते रहते हैं, एक जैसा मूड किसी का भी नहीं रहता 24 घंटा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक जैसी परिस्थिति वैसा मूड। और बाबा हम सबसे चाहता है कि मेरे बच्चों की मूड सदा खुशनुमा, एक रस, प्रसन्न चित्त रहे। प्रसन्न चित्त मूड, खुशनुमा मूड, कुछ भी हो जाए उस पर कोई प्रभाव ना आए। क्या ऐसी मूड बनाने के लिए मैंने ऐसा कोई संकल्प लिया है? चिंतन ही मूड को चेंज करता है, मूड को कोई दूसरी बातें चेंज नहीं करें। जैसा जैसा हमारा अंदर चिंतन चलता जाता ना, वैसा चेहरे पर आता जाता है। चिंतन का दर्पण चेहरा है। जिस प्रकार का चिंतन हम कर रहे हैं वो हमारे दर्पण से दिखाई दे रहा है, चेहरे से पता चला ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए हम चिंतन को बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली, कभी भी इसको हम साधारण में न ले जाएं। और चिंतन को ही चेंज करने के लिए बाबा ने हम सबको सवेरे की मुरली दी है। ये नहीं कहता शाम को सुनो, कई लोग सुनते हैं शाम को आकर के, भले सुनो, नहीं टाइम मिलता है। लेकिन हरेक को लक्ष्य रखना चाहिए, 24 घंटे की दिनचर्या में सबसे पहला फाउंडेशन सवेरा है, अमृत वेला है। अमृत वेले का योग और अमृत वेले की मुरली, सवेरे की मुरली, अगर ध्यान से कोई ने अच्छी तरह से सुनी है, उस पर चिंतन किया है, उसका फाउंडेशन पक्का हो गया, दिन में आने वाली बातें उसके लिए कोई बड़ी नहीं लगेंगी। बाबा ने आज मुझे ऐसा भर दिया, ये शक्ति दे दी। अब दो दिन से ड्रामा की कितनी अच्छी मूल्यां चल रही है, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है, ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन चिंतन किया, उसका स्वरूप पाया। अगर नहीं आया तो छोटी सी बात हो गई, ऐसा मेरे साथ हो गया, इसने ऐसा कर दिया। अब बाबा कहता ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और मैं उसमें करेक्शन कर रहा हूं, कैसा मेरे साथ क्यों हो गया। माना भगवान की इस बनी बनाई खेल में भी हम अपना बुद्धि लगा रहे हैं। प्रसन्न चित्त कैसे रह सकते हैं, मूड एक रस कैसे रह सकते हैं? अगर एक रस मूड रखनी है तो बाबा की ऐसी ऐसी मुरलियों पर ऐसे ऐसे ज्ञान को अच्छी तरह से घोट घोट करके अपना बना लो। कभी भी कोई बात देखेंगे ना, ऐसे लगेगा मेरे ऊपर आई नहीं, ऐसे चली गई ऊपर से, आई सबके आगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, लेकिन उसको बड़ा रूप नहीं बनाते, आई है ऐसे पार हो जाते, सहज लगता है। तो हम सबको बाबा सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, किसी भी प्रकार की बात आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हमारी दादी जानकी का ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हम लोग बहुत सारी बातें लेके दादी के आगे जाते हैं। आपको पता होगा जितनी इंडिया की प्रॉब्लम्स की पोस्ट आती है मैं ही देखता हूँ दादी के समय से। और जानकी दादी को इंडिया के बारे में इतना पहले से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, विदेश को देखती रही इतने दिन। अब सारी जवाबदारी जब इंडिया की आई तो नेचुरल है, पता चलता ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और मैं जा करके मेरे पोस्ट मिलती है, पढ़ता हूँ, दादी को बताने जाता हूँ, दादी ऐसा सब ठीक हो जाए, बाबा बैठा है ना। कभी भी कोई नेगेटिव बात आती नहीं उनके अंदर, अरे 90% सब ठीक है, 10% कुछ होता है ना, ठीक हो जाए, बाबा बैठा है। आप उसको इतना पॉजिटिव लिखो, इतना अच्छा लिखो, उसका महिमा करके लिखो जो उसकी बातें खत्म हो जाए। बातों को छेड़ना नहीं, बातों को दबा दो और तुम उसकी इतना अच्छी तरह से महिमा लिखो ताकि वो अपनी बातों को भूल जाए। ये है दादी की पालना। ऐसे पॉजिटिव रूप लेकर के उसके लिए योग करती हैं, उसके लिए सब भावनाएं रखती हैं, उसको सकाश देती हैं। ऐसा नहीं भूल जाती है सुन करके, संकल्प तो आते हैं ना कि ऐसा यहां हो गया, इस सेंटर पर हो गया, उस बहन के साथ हो गया, ऐसा हो, लेकिन उसको चिंतन वर्णन तक नहीं लाती। मदद करना एक बात है, सहयोग देना अलग बात है, लेकिन चिंतन और वर्णन करके हम बात सुना के आए, दो लोग और आ गए उनको सुना दिया, तीसरे को सुना दिया, चौथा, तो वातावरण कैसा बनेगा। इसलिए दादियां हम सबको ये ट्रेनिंग देती हैं कि कोई भी बात हो जाए उसको बड़ा रूप नहीं दो। एक बार बाबा को हम लोगों ने, अव्यक्त बाबा आए थे, मधुबन वालों से पर्सनल मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में, तो बाबा ने अचानक कहा कि मैं टाइप करता हूँ, कोई टेप भरता है, कोई कुछ करता है, बहुत सारे चलते ना, तो बाबा ने कहा सब बंद कर दो, तो सबने सोचा पता नहीं बाबा कुछ कहना चाहता है। बोला टाइप करना बंद करो, मेरे को ऐसे ही सारा क्या टाइप करना बंद कर दो, टेप बंद कर दो। अब माइक तो नहीं बंद हो सकता कि बाबा की आवाज तो इतना पहुंचती नहीं। बाबा ने अब सुनाओ क्या हो रहा है मधुबन में, क्या चल रहा है सेंटर्स पर, सब एक एक से पूछना शुरू किया। सबने सुनाया बाबा ये हुआ, कई प्रॉब्लम्स आती हैं सरकार के द्वारा आ जाते हैं, कहीं कहीं की आती हैं, बहुत सारी यज्ञ के आगे बातें आती हैं। तो बाबा को सब सुनाया, बाबा मुस्कुराता रहा पहले देख करके, फिर बोलता है बच्चे सवेरा आने से कोई रोक सकता है? सवेरा आना है ना, सत्युग आना है ना, और जब आना ही है निश्चित है तो ये छोटी छोटी विघ्नाएं हैं परीक्षाएं आई है पार हो जाएंगी, सत्युग तो आना ही है। जब वो आना ही है तो तुम लोग इन बातों की परवाह क्यों कर रहे हो, पार करो इनको, कुछ नहीं है बड़ी बात। पेपर यज्ञ के आगे बहुत बड़े बड़े आते हैं, समय प्रतिसमय आते हैं, कभी सरकार के द्वारा आते हैं, कभी इनकम टैक्स के द्वारा आते हैं, कहीं जब बढ़ती है ना संस्था, कभी टीवी वाले आ जाते हैं, कभी अखबार वाले आ जाते, कुछ न कुछ ऐसी बात देखी और फैला देते बात को। सोचने वाले इतना बड़ा रूप ले लेते हैं, इस संस्था में भी ऐसे होता है, यहां भी ऐसे होता है, बाबा गण में भी ऐसे हो गया। परवाह नहीं करो इन बातों की, ज्यादा परवाह नहीं करो, तुमको निश्चय है ना सवेरा आने वाला है, सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, तुम्हारा साथी सर्वशक्तिमान है, स्वयं भगवान तुमको गाइड कर रहा है, फिर ये बातें क्या बड़ी बात है, आने दो पार हो जाए। इतना लाइट किया, इतना हल्का कर दिया सबको, सब भूल गए कि कोई बात हुई थी और खत्म हो गई। अगर हम उन बातों को ले लेते हैं, उठा लेते हैं, तो सोचते हैं ये भी उस संस्था के ऊपर हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ना हो जाए। हमारे साथ क्यों होगा, हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, और हम मर्यादा की लकीर के अंदर चल रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, धारणाओं पर चल रहे हैं। कोई झूठा मूठा आरोप लगाएगा भी, सत्यता को कोई छिपा सकता है क्या? अपने आप आएगी बाहर। इसलिए बाबा कभी भी हिलता नहीं, और बच्चों को कहता बच्चे अचल रहो, अडोल रहो, एक रस रहो, कोई विघ्न आएंगे पार हो जाएंगे। तो विघ्नों की परवाह नहीं करनी है, कोई भी बात आ जाए ना, नथिंग न्यू, नई है ही नहीं, और नई है नहीं, और नई दुनिया नहीं है। तो जब वो आने वाली दुनिया है और उसके लिए हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया है, तो छोटी छोटी कोई भी बातें आए, मन के अंदर आए, शारीरिक रूप में आए, पारिवारिक रूप में आए, आर्थिक रूप में आए, भटकती हुई आत्माओं के रूप में आए, प्रकृति के द्वारा आ जाए, कोई द्वारा भी आए, हम बच्चों को अचल अडोल एक रस स्थिति में रहना है, बाबा को साथी बना करके उसको कंबाइन रखो, यहाँ बिठा लो अपने साथ। कहता मैं बच्चे ज्यादा जगह नहीं लेता हूँ, मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, आत्मा इतनी छोटी है, उसको साथ ही मना करके ऐसे साथ में बिठा लो। अब जिसके साथ स्वयं भगवान है और निश्चय से हम कहते हमारे साथ वो है, तो कोई भी कुछ कहेगा तो क्या होगा, हमको असर ही नहीं होगा कि हमारे साथ कौन है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि अचल अडोल स्थिति बना करके बाबा कहता अपने चेहरे और चलन से मुझे प्रत्यक्ष करो। कई बातें आती हैं परिवार के अंदर, जिसकी स्थिति अच्छी है ना, उसको कहना नहीं पड़ता है कि मुझे सेवा करनी, अपने आप सेवा होती है स्थिति अच्छी है। तो एक माता के आगे एक पेपर आया, एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ। एक ही बेटा था, पढ़ने जाता था, 17 साल का हुआ, उसकी दिल हुई एक मोटरसाइकिल चाहिए, इकलौता बेटा है, माँ बाप का लाडला था, गीता पाठशाला घर में थी, 17 साल का बेटा है, कहता मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। बाप कह रहा है भाई तुम फोर व्हीलर ले लेना, मोटरसाइकिल क्या करेगा, नहीं नहीं मेरे को तो मोटरसाइकिल चाहिए, महंगी से महंगी 70-80 हजार की मोटरसाइकिल लेके आया। कुछ दिन चलाया वो मोटरसाइकिल, का एक्सीडेंट हुआ, उसी में मर गया वो, फिर छोड़ दिया। सबके मना करने के बाद भी परिवार वालों को, बहुत प्यारा बच्चा, यहाँ आकर के सेवा भी करता था लिटरेचर में, एक ही बेटा जिद से मोटरसाइकिल लिया और जा करके एक्सीडेंट करके खत्म हुआ। अब आप समझते हो इतना बड़ा पेपर उस परिवार के आगे आया, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, तो ब्रह्मा कुमारी को मानता है, भगवान इसका साथी है, ये है ये है, दुनिया भर की बातें। लेकिन उनको इतना निश्चय था मेरा बेटा तो बाबा है ना, इसका इतना पार्ट था पूरा हो गया। माँ इतनी निश्चय बुद्धि, जो माँ ने फोन किया, और ड्रामा अनुसार हम लोग उस समय दादी गुलजार के पास बैठे थे। फोन जब आया तो थोड़ा तो भर तो जाती है, तो बोलते बोलते भर गई, वो भाई ने से शरीर छोड़ा है, बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। दादी जी को हाथ में फोन दे दिया, दादी ये माता का ऐसे ऐसे समाचार है। दादी ने उसको इतना बल दिया, तो ऐसे पेपर अगर किसी के सामने आते हैं तो समय स्थिति का पता चलता है। तो उसको दादी ने बड़ा हिम्मत दिलाई, उमंग दिलाया, कोई बात नहीं, उसका पार्ट बाबा की नई दुनिया की स्थापना के लिए खुला है, इसलिए उसने इस चोले को चेंज किया है, तुम चिंता नहीं करो। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो यहाँ से जाती हैं, नई दुनिया के लिए जरूरत होती है, बाबा को मदद करने के लिए जाती है, इसलिए आप इतनी परवाह नहीं करना, निश्चिंत रहना। बहुत प्यार से दादी ने उसको समझा दिया, इतना खुश हो गया परिवार का, तो चलो कोई बात नहीं, बाबा की सेवा के लिए गया, एडवांस पार्टी में गया, हल्का हो गया, लाइट हो गया। लेकिन वो स्थिति उस समय के पेपर में जो पास होकर के उसने दिखाया, उसके सारे समाज की, सारे परिवार की सेवा हो गई। कोई शक्ति है जो इतना अचल बना सकती है, ज्ञान सुनाने से नहीं समझ में आया। उसके बाद उस पर जो छाप पड़ी लोगों के ऊपर, अब सब मानने लगे, उसकी गीता पाठशाला भरपूर हो गई, सब आने लगे। सेवा ज्ञान से सिर्फ नहीं हो रही है, लेकिन अपनी स्थिति और अपनी धारणाओं से सेवा होती है। परीक्षाएं इस कलयुग के अंदर किसके पास नहीं आती, काले मौत हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती। बाबा कहता बच्चे सब बातें आई हैं, पेपर आए हैं, तुम आगे बढ़ जाओ, क्लास आगे बढ़ाने के लिए आई है, डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपनी स्थिति को एक रस बनो। तो ऐसे कई मिसाल पता है हम हो रहे हैं संसार में, जो लोग समझते हैं ऐसा क्यों हो गया, और बाबा कहता ऐसा ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई रहस्य है। तो हम सबको बाबा ऐसा अच्छा लडोल एक रस निर्विघ्न स्थिति देखना चाहता है। विघ्न आ गए, घबराओ नहीं, पार हो जाओगे। ओके, अभी आपके कोई प्रश्न हो तो पूछो। ऐसा है कि हम उनको बल दे सकते हैं, क्योंकि आत्माएं निर्बल हैं। निर्बल आत्माएं उस विघ्न को पार नहीं कर पाती। निर्विघ्न बनाने का मतलब उनके विघ्न हट जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उस विघ्न को पार करने की उसको शक्ति मिल जाए। विघ्न तो हर एक के अपने अपने हैं, अपने हिसाब किताब हैं, लेकिन हम उनको शुभ भावना की शक्ति से मदद करें, ताकि उनके अंदर इतनी शक्ति आए कि मेरा कोई साथी है, मेरा कोई है सहारा, उस सहारे के बल के आधार से आने वाले पेपर को पार कर सके, उनको बड़ा रूप न दिखाई दे और सहज पार हो जाए। बाकी विघ्न हट जाएगा ऐसा नहीं, विघ्न तो आएगा ही, विघ्न उसका अपना हिसाब किताब चल रहा है, आप उस विघ्न को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन विघ्न को पार करने की शक्ति उस आत्मा को दे सकते हैं। तो हम सबको बाबा कहता है जो निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, माना विघ्न का वायुमंडल है, विघ्न है संसार के अंदर, ऐसा नहीं है कि कलयुग के अंदर ये विघ्न हट जाएंगे, ये तो और बड़े रूप में आने वाले हैं, ये तो पहाड़ हैं, लेकिन इनको पार करने की शक्ति हमको चाहिए। विघ्न हटाने लगेंगे तो कैसे हटेंगे? मान लो आज हमारे आगे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक पहाड़ी आ जाए तो हम उसको तोड़ेंगे क्या? हम कहेंगे चल इधर से निकल जाए भाई, इधर से छोड़ दे, रास्ते में पड़ा है, अभी कौन इस पत्थर को हटाएगा, हटाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी कलयुग के अंदर किसी के आगे विघ्न आता है, उसको हटाना और तोड़ना नहीं है, लेकिन उसको अपने आप को बना करके, अपनी स्थिति को बना के पार हो जाना है और दूसरों को पार ले जाना है। कलयुग माना ही ये सब अति की ओर जाएगा, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, विकार अति में जा रहे हैं, पाप अति में जा रहे हैं, प्रकृति अति की ओर जा रही है। हम योग करेंगे एक प्रकृति की तत्व शांत हो जा तो शांत हो जाएगी क्या? हो तो अपना काम करना है उसको, इतने बड़े विनाश को लाना ही है, लेकिन उस विनाश के दृश्य को आत्माएं पार कर सके उसकी शक्ति चाहिए उसको, उनके उसमें घबराए नहीं, हाय ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। हम योग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि प्रकृति तो शांत हो जा, हम कहते हैं भले तुम उछले लेकिन हम पार हो जाएं उसको, वो उछलेगी नहीं तो ये परिवर्तन कैसे आएगा, वो तो उछलनी ही है। हम सब जानते हैं अति होनी है हर क्षेत्र में, तो इन सब की अति के बीच में व्यक्तियों की स्थिति न बिगड़े उसके लिए हम लोग योग कर रहे हैं, सुभावनाएं दे रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। अपने आप को हम शक्तिशाली बना लें ताकि हम कोई भी बात आ जाए पार हो जाए, और दूसरे अगर कमजोर हैं तो हम उनको बाबा की शक्ति इसलिए दे रहे हैं, उनको बाबा का इसलिए बना रहे हैं कि ये पेपर आएंगे और तुम अपने आप को मजबूत बना के इनको पार करो। पेपर नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, कलयुग है, कलयुग के अंदर सब बातें आने वाली है, हर क्षेत्र में अति होने वाली है। हमारा यज्ञ इसलिए नहीं रचा गया कि ये शांत हो जाएगा, ये तो बाबा कहता है जितना यज्ञ करोगे उतना ये विनाश वाला भड़केगी भड़कने के लिए भड़का रहे हैं, लेकिन स्थिति बच्चों की ठीक रहे, उस भड़कती हुई आग में भी वो पार कर ले उसकी शक्ति है, क्योंकि बिना भड़के ये तो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए विघ्नों को टालना नहीं है, विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन हम अपनी स्थिति से निर्विघ्न स्थिति बना करके पार हो जाएंगे। जी देखो, कोई भी चीज को जो बढ़ाना होता है ना, बताया ना भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियां डाल के आग को बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें, प्राप्तियां, संगम पर बाबा से मुझे क्या क्या मिला है। लगन माना प्यार, लगन का अर्थ है प्यार। प्यार व्यक्ति का तब बढ़ता है जब कोई से बहुत कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है। अगर हमसे आपको कोई प्राप्ति नहीं तो प्यार करने की क्या जरूरत, मिले प्यार होगा ही नहीं। प्यार तब होगा जब कुछ प्राप्ति हो रही है किसी व्यक्ति से। बाबा से हमको संगम पर कितनी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को चिंतन में लाओ, सुमिरन में लाओ, उसकी सुमान में रहो, स्मृति में रहो। बाबा आपने मुझे क्या बनाया है, क्या दिया है, अविनाशी रतन दिए हैं, खजाना दिया है, शक्ति दी है, साथ दे रहे हो, आप जैसा साथी मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे चिंतन अगर ऐसा बन जाएगा तो आपकी लगन बढ़ जाएगी। कई बार हम लोग सोचते ही नहीं है कि इतनी अच्छी लाइफ, हम जब मान लो यहाँ बैठे हैं, यज्ञ के अंदर हैं, हम यहाँ बैठ के सोचने लगे हमारे पास कुछ नहीं है, लोगों के पास ये है, ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसे महल हैं, ऐसे मकान हैं, ये है, ये है, ये है, हम खुश रह सकते हैं क्या? हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे जितना कोई के पास नहीं, हमको बाबा ने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है जो हमको आज कोई चीज की चिंता नहीं है, सब प्रकार से बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह बनाया है, बाबा आपने कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का गम नहीं, ऐसी जीवन दी, वाह बाबा वाह, हमारा प्यार बढ़ जाएगा। हम अपनी प्राप्तियों की बजाय हम दूसरों से भेंट अगर करने लगते तो हमारी खुशी गायब होती, और जहां खुशी गायब होती, प्राप्तियों की स्मृति नहीं रहती, वहां लगन कम हो जाती। इसलिए अगर लगन को बढ़ाना है ना, तो जो कुछ बाबा से प्राप्त हुआ है, अविनाशी धन प्राप्त हुआ है, अविनाशी प्यार प्राप्त हुआ है, अविनाशी प्रकार की पालना मिल रही है, सकाश मिल रही है, अभी वतन में जाके बाबा हमको छोड़ा नहीं, सकाश दे रहा है, कितना उसका रहम है, कितना उसका प्यार है। अगर प्राप्तियों को याद करो तो एकदम प्यार से दिल भर जाएगी, और उस प्यार में खो जाओ, बस यही लगन है और क्या है, इस लगन के आगे कोई विघ्न ही नहीं। इन प्राप्तियां कभी कभी भूल जाती है ना, देखो इतनी अच्छी फरिश्ता जीवन किसी की है? आप अपने जीवन को ही देख लो, आप भले इतनी बड़ी प्रवृत्ति में हो, कोई बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, कोई फिक्र है, ठीक है, हरेक का पार्ट है, हरेक अपने अपने जगह पर ठीक है, मुझे जो बाबा ने दिया सब कुछ दे दिया। अगर सचमुच अपने भाग्य को देखो तो दुनिया वालों की भेंट में आप कितनी महान आत्माएं हो, पवित्र स्वच्छ बन गई, घर ग्रस्त एक सुंदर आश्रम बन गया, इतनी अच्छी जीवन बन गई, किसने बनाई? कलयुग के अंदर है किसी संसार में किसी प्रवृत्ति है? सब संसार में रह रहे, लेकिन आज नरक बना हुआ परिवार, और बाबा ने हमारे परिवार को क्या अच्छा बना दिया। तो अगर हम प्राप्तियों को याद करते ना, तो प्राप्तियों के आधार से प्यार उमड़ता, और प्यार जितना जिसका तेज है वही आग है, अग्नि है, लगन। ठीक है, चार बता नहीं पाया शायद मैं है? पहला फाउंडेशन है प्योरिटी, प्योरिटी फर्स्ट है। जितनी पवित्रता की स्टेज हमारी बढ़ती जाएगी, उतना इस ब्राह्मण जीवन के विघ्न हटते जाएंगे। अपवित्रता ही विघ्न है सबसे बड़ा। तो पहला फाउंडेशन प्योरिटी, दूसरा रूहानी स्नेह, तीसरा गहरी शांति का अनुभव, शांति का, एकदम डीप साइलेंस का अनुभव। और चौथा अंदर बाहर की स्वच्छता, प्योरिटी से अलग बात। स्वच्छता जो है ना, जहां सफाई होती है ना, कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां पर भगवान का निवास है। इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है जिस स्थान पर हो। हमारे बाबा ने हमें वस्त्रों की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, स्थान की स्वच्छता सब बताया है। अगर वो स्वच्छता को हम संपूर्णता से पालन कर रहे हैं तो आप देखो सहज योगी आपकी जीवन है। जहां गंदगी है वहां कौन बैठना चाहेगा। इसलिए स्वच्छता, पवित्रता, रूहानी स्नेह और गहन शांति, ये चार पिल्लर्स हैं। जी थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोला? क्लीननेस। ये बहुत बड़ी साइंस की उपलब्धि भी है और बहुत बड़ी माया भी है, दोनों चीजें हैं। बहन जी का प्रश्न है कि इस समय, प्रश्न नहीं है कमेंट्स, माना आजकल जो चल रहा है प्रैक्टिकल है कि हमारे इंटरनेट हमारे हाथ में है। आज हमारे पास भी जैसे व्हाट्सएप है या इंटरनेट है या कोई भी सुविधाएं हैं, मुरली घर बैठे मिल रही है। 6 बजे के पहले 5 बजे हाथ में अगर किसी के हाथ में मुरली आ जाए तो सुन लेता है वो, कहता क्लास में जाने की क्या जरूरत है, हमने तो पढ़ भी लिया सुन भी लिया सब कुछ हमको मिल गया हाथ में, संगठन से दूर जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसका आलस्य बढ़ रहा है, संगठन से वो दूर हो रहा है, परिवार से दूर हो रहा है, और समझता मैं बाबा का रेगुलर स्टूडेंट हूं, मैं तो रोज मुरली सुनता हूं। आजकल की ये बहुत बड़ी माया है, चारों तरफ से फैल रही है और बहुत बड़ी रूप में फैल रही है। कई मधुबन में नहीं आना चाहते हैं आजकल, कहते हैं मधुबन में जाओ तो कहां बैठते हैं बाबा को, हम घर में तो सामने देखते हैं, टीवी पर ऐसे दिखाई देता है जैसे मैं डायरेक्ट मिल रहा हूं, और आज यहां भी टीवी पर ही देखना है तो मधुबन जाने क्या फायदा, धक्के खाओ, खाने के लिए धक्का, रहने के लिए धक्का, सब जगह धक्के। तो कई पुराने लोग ठंडे हो गए, घरों में बैठ गए। लेकिन स्थान का बहुत बड़ा भक्ति के अंदर बहुत महत्व रहा है। आज तीर्थों पर क्या है, मूर्तियों मंदिरों में क्या रखा है, आपके घर में रख लो इससे अच्छी मूर्ति, सोने की रख लो, चांदी की रख लो, क्यों धक्के खा रहे हो मंदिरों में। लेकिन इतना सब होते हुए देखो तीर्थ त्योहार होते हैं, तीर्थ होते हैं, कितनी मेहनत से कितनी परिश्रम करके उसी दिन की डुबकी का महत्व होता है, उस स्थान का महत्व होता है। क्यों लोग भक्त जाते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं है फिर भी जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और यहां तो सब कुछ प्राप्ति हो रही है, फिर भी लोग ये सोच करके अलबेले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, धीरे धीरे परिवार से कट जाते हैं। माया का वार एक इस रूप में बहुत फास्ट गति से हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। संगठन अगर नहीं है, वातावरण अगर नहीं है, स्थान का महत्व नहीं है, तो उसकी जो शक्तियां हैं उनसे वो आत्मा वंचित है। भले वो मुरली सुने उसकी मार्क्स नहीं मिल सकती है अगर वो परिवार से दूर है तो, क्योंकि हम परिवार के बीच में जब जाएंगे तो हमें अपनी स्थिति का पता चलता है कि हमारी स्थिति कहां तक। अगर मधुबन ना हो तो आपको क्या पता चले कि मधुबन में भी क्या चल रहा है, मधुबन का वातावरण क्या है, मधुबन की पालना क्या है, इसका अनुभव आप कर ही नहीं सकते हैं, दूर बैठे वहां घर में क्या करेंगे। बाबा को भले टीवी पर देख लो, सिर्फ बाबा से ही हमारा काम है कि हमारे परिवार से भी काम है। तो अगर हम यहां आते हैं तो यहां के वातावरण का, सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर के वातावरण का, वहां की शक्तियों का, वहां की बाबा की स्पेशल जो प्रेरणाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। इसलिए सेंटर से किनारा नहीं करना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि कई आत्माएं कुछ रूठती हैं, हम कहते हैं कुछ रूठी कुछ घर का बुलावा आया, दोनों बातें हैं। कुछ माया अपना वार करती है और कुछ अंदर से डिस्टर्बेंस होती है, समझते हैं हम तो मुरली सुन रहे हैं, हम तो घर में पढ़ रहे हैं, हमको सब घर में मिल रहा है, परिवार से दूर हो गए, भाग्य से दूर हो गए, क्योंकि तन मन धन सफल ही नहीं हो रहा उनका। सेंटर पर जाएंगे तो कुछ धन भी लगाएंगे, कुछ मन भी लगाएंगे, कुछ तन भी लगाएंगे, भाग्य तो सब तरह से बनाना है ना। इसलिए बाबा ने जो नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हैं, उसके अंदर चलना, उसके अंदर रहना जरूरी है। मान लो अगर चांस मिलता, आप पढ़ रहे हो, भले सुनो ना, जाके घर में भी सुनो, मना किसने किया, लेकिन सेंटर तो सेंटर ही है, सेंटर को मिस नहीं करना चाहिए। मैंने एक दिन क्लास कराया था इसके पहले वहां पर शांतिवन में, हमने कहा अगर मान लो आपकी गाड़ी खूब पेट्रोल से फुल है, आप स्पीड में चल रहे हो, फास्ट जा रहे हो, लेकिन वो पेट्रोल खत्म नहीं होगा क्या? आपको पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी? पेट्रोल पंप के बिना आप मंजिल तक पहुंच सकते हो? कितना पेट्रोल है आपके पास? तो ये पेट्रोल पंप है जो स्टेशन है, वहां पर आपको ब्रेक तो देनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, जाओगे आप फुल हो जाएगा, फिर से आप चलो, फिर से स्पीड बढ़ाओ। इसलिए बीच बीच में अपना जो नियम है सेंटर पर जाने का, ये भी जरूरी है, उसको पालन करना चाहिए। ओके, और कुछ प्रश्न है? भाई लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं, पूछो। हाँ बोलो। क्या चीज मैं समझाने? ऐसा है, अगर लेटरिन जाते हैं तो स्नान करना जरूरी है, वैसे नहीं। अगर आप नींद से उठ गए, फ्रेश होकर के बैठो, आराम से योग करो, उस समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेटरिन में गए हैं तो कपड़े बदल करके स्नान करके ही योग करना चाहिए, ऐसे नहीं वहां से जा करके और आकर के योग। बहुत फास्ट बढ़ रहा है ये, तो आप कैसे बोल रहे हैं? खैर विदेश के विषय में मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत फास्ट स्पीड में वृद्धि हो रही है। मैं जहां जाता हूं ना, जहां 50-100 का एक क्लास था, आज वहां 200-250-300, सब जगह क्लास फुल मिलते हैं, कोई क्लास खाली नहीं मिलते। क्योंकि यहाँ पर ये जो आस्था चैनल के द्वारा शिवानी का प्रचार हुआ ना, और इसके कारण लोगों की भावनाएं चेंज हुई, भावना चेंज होते होते वो सेंटर से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो वृद्धि जो हुई है 9 लाख से ऊपर कैसे हुई? अब 1-2 साल के अंदर इतनी फास्ट वृद्धि हुई है ब्राह्मणों की, जो भले थोड़े वो उस स्टेज तक नहीं है, उतना निश्चय हो, इतना बल आ जाए, वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन संख्या तो यहाँ बहुत बढ़ी है जी। उनका सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन क्लासेज भी बढ़े होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं बढ़े हैं। अब उसके लिए क्या है, कुछ न कुछ नवीनता करनी पड़ेगी। कहीं कहीं का ऐसा अनुभव होगा, लेकिन सब जगह का मेरे को तो लगता है नहीं है। स्टूडेंट्स की कमी नहीं पड़ी है, स्टूडेंट्स तो बहुत बढ़ रहे हैं। देखो ऐसा है कि पालना की बहुत जरूरत है, हमारी निमित्त आत्माएं अगर पालना अच्छी करेंगी ना, तो लोग खींच के आएंगे, मेरे को तो जहां तक। पालना चाहिए, हमारी दादी की पालना में देखो लंदन परिवार इतना बड़ा, दादी की पालना बहुत गहरी सबको मिली है। अब दादी के वहां से आने के बाद थोड़ा सा अभी लंदन भी थोड़ा कम हो रहा है। बोलो। ऐसा है कि आत्म अभिमानी स्टेज को बनाए रखने के लिए नेचुरल एक चिंतन है, मैं देह से अलग हूं। जितना आप अपनी स्वमान की स्थिति में रहे ना, कोई न कोई स्वमान लेकर के कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति को कोई न कोई सम्मान दे करके इसके चिंतन को बढ़ाओ, जिससे बॉडी कॉन्शियस का जो भान है वो खत्म हो जाए। कोई न कोई नया सम्मान, हमने इस बारी एक लिस्ट बनाई थी, शायद पहले मिली हो आप लोग, 365 दिन के 365 सम्मान भेजे, रोज एक नई बात लेकर के सम्मान का अभ्यास करो। सम्मान का अर्थ यह है आत्मा को मान देना, स्व को मान देना। तो मैं क्या हूं, मैंपन की जब स्मृति रहती है ना, मैं जो ये मैं बॉडी कॉन्शियस का आ गया है, वो मैं जब आत्मिक स्थिति का सम्मान आता है तो वो नेचुरल एक उस स्मृति में हम टिक सकते हैं। तो रोज कोई ना कोई एक सम्मान लेकर के उस स्मृति को बढ़ाएंगे तो देहमान समाप्त हो, कर्म में रहते भी वो स्मृति रहेगी, मैं ये हूं, सिर्फ आत्मा हूं नहीं लेकिन मैं ये आत्मा, मैं ऐसी आत्मा हूं, कर्मयोगी बन सकते हैं। रोज एक नया, बाबा के वरदान से ले लो, स्लोगन से ले लो, कहीं से भी एक पॉइंट ले लो, तो आपको नए ढंग से हमेशा पुरुषार्थ में नवीनता चाहिए, जैसे है वैसे रोज नहीं। बोलो, ऐसा है दान के लिए बाबा मना नहीं करता, लेकिन दान हमेशा भक्ति के अंदर पात्र को दिया जाता है। पात्र क्या है, अगर पात्र ठीक नहीं है, दान आपने दिया तो खराब जगह पर चला जाएगा। इसलिए कर्म फिलॉसफी ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करो जो जा करके कोई कुकर्म करे, कोई पाप कर्म करे, शराब पिए, दूसरे धंधे में लगा दे, आपका पैसा उसको सहयोगी बना दे पाप कर्म में, तो वो दान आपका आपको सहभागी बना सकता है। इसलिए बाबा ने हमको कर्मों की फिलॉसफी सुनाई है कि दान करना है तो दान माना ऐसी जगह पर लगाओ जो सफल हो, ऐसे कार्य में लगाओ जो आपका सफल हो और उसका आपको रिटर्न मिले। इसलिए सोच समझ करके पात्र को दान देना चाहिए, जो आया वैसा नहीं। मान लो कोई भिखारी है, भूखा है, आपके अंदर रहम है तो उसको भोजन खिलाओ, उसको खाना दे दो, लेकिन अगर उसको पैसा दे दिया और उसकी आदतें और खराब हैं, खराब आदतों को तो चेंज नहीं किया लेकिन पैसा दे दिया और यहां से आपका पैसा ले जाकर के जुआ खेला, शराब पिया या कोई ऐसा कर्म किया, तो उसका रिटर्न भी आपको देने वाले को पड़ेगा। ये बाबा हमको कर्म फिलॉसफी सिखाते हैं। इसलिए दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है और जहां सफल होता है वहां लगाया जाता है। तो ऐसा बता सकते हैं, बाबा कई बात स्पष्ट किया है बात, तो ठीक है। और कोई प्रश्न है जी? नहीं, अमृत वेले खास पूछ रही है। ऐसा है कि अमृत वेले अगर इस शारीरिक स्थिति का ज्यादा अभ्यास करेंगे तो नींद आएगी, इसलिए प्रश्न इसका इसीलिए उठा है कि शारीरिक स्टेज की बजाय उस समय अच्छी रूह ध्यान करो, बाबा से शक्तियों का अनुभव करो। अशारीरिक स्टेज बीच बीच में हम कर्म में भी कर सकते हैं, बीच बीच में अभ्यास कर दे, ट्रैफिक कंट्रोल समय एक सेकंड किसके ये अलग है, मैं अलग हूं, देह और देही का अलग अनुभव अशारीरिक स्टेज है। लेकिन अमृत वेले अगर मान लो मैं शांत स्वरूप स्टेज में एकदम देह से डिटैच होने का अभ्यास करूंगा तो हो सकता है वायुमंडल का असर पड़ जाए, नींद आ जाए। इसलिए उस समय इस अभ्यास के बजाय एक बहुत अच्छा सम्मान लेकर के, एक नशा लेकर के बाबा से मीठी मीठी वार्तालाप करो, भगवान के मिलने के सुख का अनुभव करो और उस स्टेज में बैठो जिससे आपको बाबा के प्यार का अनुभव हो, सकास का अनुभव हो और वो सकास दूसरों को पहुंचे, वो अभ्यास करो। बाकी एकदम डिटैच हो गए शरीर से तो हो सकता है वो अशरीरी स्टेज निद्रा के लोक में ले चले जाए। सवेरे की स्टेज में नहीं, अशरीरी स्टेज अगर कोई बनती है और उसको आलस्य नहीं आ रहा है और समझता है मैं बिल्कुल डिटैच होके बाबा के साथ मिलन मना रहा हूँ, शक्तियां आ रही हैं, तो अच्छा है, करे, अभ्यास कर सकते हैं। तो जिसको लग सकता है मेहनत है, थोड़ी मेहनत, लेकिन रोरियान करते करते वो स्टेज बन जाएगी, तो अच्छा है ना, चले जाते हैं। तो इसलिए संकल्प को कोई न कोई अच्छा संकल्प देना चाहिए। संकल्प को भी अच्छा संकल्प दो। डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा है, जो अभ्यास कर रही है ठीक है, आप जैसा समझती हैं जो ठीक लगता है वैसा अभ्यास करो। बाबा को याद करना है, अगर वो साइलेंस, गहरी साइलेंस में कई बार लगता है कि दूसरी आवाजें डिस्टर्ब कर रही हैं, बार बार संकल्प जैसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको चेंज करो ना। आपके पास इतना ज्ञान है, इतना रूरियान के बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी विषय दिए हैं, कभी प्रेम स्वरूप का अनुभव करो, कभी शक्ति स्वरूप का अनुभव करो, कभी आनंद स्वरूप का अनुभव करो, कभी ज्ञान स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। जो आत्मा के सातों गुण है ना, वैरायटी है ना, एक जैसा अभ्यास क्यों करना। तो चेंज करते जाओ ना, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, नवीनता होगी तो मजा आएगा। सिर्फ साइलेंस में बैठेंगे तो एक दिन साइलेंस करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, यही करना है क्या, थक जाएंगे। इसलिए नवीनता करते रहो रोज। चलो ओम शांति। चलो दो मिनट बाबा को याद।